नमस्कार, आप सुन रहे हैं संयुक्त राष्ट्र समाचार सचिन गौर से। 17 मई 2019 के इस कार्यक्रम में सुनिए, जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध लड़ाई को यूएन महासचिव ने अपने जीवन की लड़ाई बताया। कहा, जलवायु कार्रवाई में पैसिफिक द्वीपीय देश पेश कर रहे हैं उदाहरण। यमन में हवाई हमले में 5 बच्चों की मौत, 16 घायल, यूएन एजेंसियों ने हमले की निंदा की। गाजा की नाकाबंदी जारी रहने से चरमराती जा रही है वहां सामाजिक व्यवस्था। और जन्म के समय बच्चों का कम वजन बनता है बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का कारण। अब समाचार विस्तार से। पैसिफिक द्वीपीय देशों फिजी, वनुआतु और तुवालु की यात्रा कर रहे संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध लड़ाई उनके जीवन की लड़ाई बन गई है। साथ ही प्रभावी जलवायु कार्रवाई के लिए उन्होंने मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति पर जोर दिया है, ताकि पृथ्वी को बचाया जा सके और भावी पीढ़ियों के लिए भविष्य को भी। उनके मुताबिक फिलहाल इस लड़ाई में दुनिया पिछड़ रही है। इससे पहले फिजी की राजधानी सुवा में पैसिफिक आइलैंड्स फोरम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पैसिफिक द्वीपीय देश जलवायु परिवर्तन और समुद्री जल स्तर में वृद्धि जैसी 2 बड़ी बुनियादी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इससे निचले तटीय देशों के लिए अस्तित्व का संकट पैदा हो रहा है।
But they are in the first line of the negative impacts of climate change. And they are doing everything not only to protect their
पैसिफिक द्वीपीय देश जलवायु परिवर्तन में योगदान नहीं देते, लेकिन उसके नकारात्मक प्रभावों को झेलने के लिए पहली पंक्ति में खड़े हैं। और वे अपनी जनसंख्या और संस्कृति बचाने के साथ साथ कार्बन उत्सर्जन कम करने का प्रयास भी इस तरह से कर रहे हैं, जो दुनिया में विकसित देशों के लिए एक उदाहरण है। महासचिव एंटोनियो गुटेरेश। यमन की राजधानी सना में गुरुवार को हवाई हमले में 5 बच्चों की मौत हो गई है और दर्जनों घायल हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। मानवीय मामलों में समन्वयन के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के प्रवक्ता येंस लार्का ने जिनेवा में पत्रकारों को बताया,
प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स वी हैड लास्ट नाइट इंडिकेट दैट 5 चिल्ड्रन हैव डाइड एंड 16 मोर वर वुंडेड।
कल रात मिली शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार 5 बच्चों की मौत हुई है और 16 घायल हुए हैं। घायलों की संख्या इससे ज्यादा है, जिनमें स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल हैं। मुझे भी पक्के तौर पर नहीं पता कि हमले में किस जगह को निशाना बनाया गया, लेकिन कई रिहायशी इलाकों पर बम गिरे हैं। 2 दिन पहले ही सुरक्षा परिषद में यमन में स्थिति से अवगत कराते हुए संयुक्त राष्ट्र बाल कोष प्रमुख हेनरिएटा फोर ने कहा था कि विषम परिस्थितियों में जीवन जीने को मजबूर बच्चे मदद की गुहार लगा रहे हैं। 4 साल से यमन में जारी हिंसा में अब तक 7,300 बच्चों की या तो मौत हुई है या फिर वे घायल हुए हैं, लेकिन वास्तविक संख्या इससे कहीं ज्यादा होने की आशंका है। यूनिसेफ प्रमुख ने स्पष्ट किया था कि राहत टीमें हर समय काम में जुटी हैं और पिछले साल लगभग 3.5 लाख बुरी तरह कुपोषण का शिकार बच्चों का इलाज किया गया। 50 लाख लोगों तक पीने का साफ पानी पहुंचाया जा रहा है और साझेदार संगठनों के साथ मिलकर 90 लाख जरूरतमंदों को नकद सहायता भी दी गई है। एक नए शोध में पता चला है कि 2015 में विश्व भर में 2 करोड़ से ज्यादा कम वजन वाले बच्चे पैदा हुए, जिनका वजन 2.5 किलो से भी कम था। हर 7 में से 1 नवजात शिशु का वजन कम रहा। हर साल करीब 25 लाख नवजात शिशुओं की मौत होती है, जिनमें 80% से ज्यादा अल्प वजनी होते हैं। ये पहली बार है जब इस विषय पर शोध किया गया है, जो एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती की ओर इशारा करता है। इस रिपोर्ट को विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष और लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन ने मिलकर तैयार किया है। दुनिया भर में कम वजन के बच्चों को ठिगनेपन, सही ढंग से विकास ना हो पाने और बाद के सालों में मधुमेह और हृदय रोग सहित अन्य बीमारियां होने का जोखिम बना रहता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जन्म के समय कम वजन का होना एक जटिल समस्या है, जिसके पीछे अंतर्गर्भाशयी विकास अवरोध, गर्भावस्था के दौरान अल्प पोषण और समय से पूर्व प्रसव जैसे कारण छिपे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की यही एक और रिपोर्ट में डिमेंशिया या मनोभ्रम के खतरे को कम करने के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाए जाने की जरूरत पर बल दिया गया है। डिमेंशिया एक सिंड्रोम है जिसमें मरीज की याददाश्त बिगड़ने के साथ साथ उसके व्यवहार में बदलाव देखने को मिलते हैं और रोजमर्रा के काम करने में मुश्किलें पेश आती हैं। दुनिया भर में 5 करोड़ से ज्यादा लोग डिमेंशिया से पीड़ित हैं। डिमेंशिया होने के जोखिम को कम करने के लिए जीवन शैली में जो बदलाव लाए जा सकते हैं, उनमें वजन पर नियंत्रण करना, सेहतमंद खाना, उचित रक्तचाप बनाए रखना और कोलेस्ट्रॉल और खून में शुगर की मात्रा को सही रखना है। गाजा इस समय गंभीर मानवीय समस्याओं और जरूरतों से जूझ रहा है, जिससे वहां सामाजिक व्यवस्था ध्वस्त होती जा रही है। इससे वहां हिंसक संघर्ष के फिर बड़े पैमाने पर भड़कने का खतरा भी पैदा हो रहा है। फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी का कहना है कि गाजा में रह रहे 20 लाख से ज्यादा लोगों में मानसिक अवसाद और हताशा फैल रही है। इसराइल द्वारा की गई नाकेबंदी पिछले 12 साल से जारी रहने से लोगों की उम्मीदें खत्म हो रही है। फिलहाल वहां 50% से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं और 80% शरणार्थी गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजारने के लिए मजबूर हैं और राहत और भोजन सामग्री पर निर्भर हैं। एजेंसी के निदेशक माथियास श्मेल ने बताया,
फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय ईयर एंड अ हाफ देयर आई हर्ड 3 पीपल सेपरेटली फ्रॉम ईच अदर टॉक टू मी अबाउट नोटिसिंग इंक्रीजिंग ड्रग अब्यूज इंक्रीजिंग सुसाइड अटेम्प्ट्स।
मेरे यहां 1.5 साल के दौरान पहली बार मुझे 3 लोगों ने बताया कि नशीली दवाओं का इस्तेमाल बढ़ रहा है, आत्महत्या की कोशिशों और वेश्यावृत्ति के मामले भी बढ़ रहे हैं और ये जगह सामाजिक अर्थव्यवस्था के नजरिए से तबाह हो रही है। इसे देखा जा सकता है। ऐसी पृष्ठभूमि में स्थिति का और तेजी से बिगड़ना किसी भी समय हो सकता है। यूएन एजेंसी के निदेशक माथियास श्माल, यूएन एजेंसी के अनुसार जून महीने तक उसे करीब 5 करोड़ डॉलर की अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होगी ताकि फलस्तीनी शरणार्थियों को गाजा में भोजन पहुंचाने का काम जारी रखा जा सके। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला वायरस से संक्रमित रोगियों की मौत के बाद उनका उचित ढंग से अंतिम संस्कार करना मुश्किल हो रहा है। संक्रमण को ना फैलने देने के लिए जरूरी है कि इबोला मरीजों को सुरक्षित तरीके से दफनाया जाए, लेकिन पैसे की कमी के चलते ऐसा नहीं हो पा रहा है। 2014 से 2016 तक पश्चिम अफ्रीका में जब इबोला फैला तो 80% लोग तब संक्रमण का शिकार हुए जब उन्होंने मृतकों को दफनाते समय सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा। यूएन साझेदार संगठन रेड क्रॉस के अनुसार उत्तरी कीवी और लितुरी प्रांतों में इबोला संक्रमण के मामले बढ़ने की रिपोर्टें मिली हैं, जबकि अंतिम संस्कार करने वाली टीम के पास सिर्फ 2 हफ्तों की ही फंडिंग मची है। पिछले साल अगस्त में बीमारी का फिर फैलना शुरू हुआ था, जिसके बाद से अब तक 1100 लोगों की जान जा चुकी है और 1600 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। ये दूसरी बार है जब इतने खतरनाक ढंग से ये बीमारी फैली है। राहत एजेंसी और स्वास्थ्य कर्मियों को उचित सुरक्षा व्यवस्था के अभाव और स्वास्थ्य केंद्रों पर हथियारबंद गुटों के हमलों से भी जूझना पड़ रहा है। इससे निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से और मदद की अपील की गई है। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।